हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सर, आपने बुलाया? धृति की मीठी सी आवाज़ ने अर्णव का ध्यान अपनी ओर खींचा। लंच टाइम होने वाला था। धृति अपना काम कर रही थी जब अर्णव ने उसे कॉल करके केबिन में आने को कहा। धृति बिना एक पल गवाए उसके सामने हाजिर हो गई और अब उसके पीए का रोल निभाते हुए ठीक उसके सामने खड़ी थी। अर्णव, जो किसी फाइल को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, उसने निगाहें उठाकर धृति को देखा, फिर चेयर की ओर आंखों से ही इशारा कर दिया। बैठो, कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे। धृति के मन में एक साथ ढेरों सवाल उठ खड़े हुए, पर अधरों पर मौन सजाए वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और अर्णव के कुछ कहने का इंतज़ार करने लगी। अर्णव ने अपने सामने रखी फाइल को बंद कर दिया और चेयर को ज़रा एडजस्ट करते हुए उसके सामने अलर्ट मोड में बैठ गया। चेहरे पर गंभीर भाव समेटे उसने कहना शुरू किया, तुमने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है? जी। धृति ने झट से सर हिलाया और उलझन भरी नज़रों से उसे देखने लगी। शायद उसके अचानक किए इस सवाल के पीछे की वजह नहीं समझ पा रही थी वो। इतने में अर्णव की ओर से दूसरा सवाल आया, बुटीक में भी काम किया है तुमने? मतलब तुम्हें न्यू आइडियाज़ को रियलिटी में ढालना आता होगा और शायद इस फील्ड में इंटरेस्ट भी हो। जी, मुझे शुरू से ही कपड़ों पर नए नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, तभी मैंने इस फील्ड में अपना करियर बनाने का फ़ैसला किया था। पर आप अचानक ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? अर्णव ने गहरी सांस छोड़ी और गंभीरता से बोला, तुम ये तो जानती ही होगी कि 2 महीने बाद हमारी कंपनी अपना न्यू कलेक्शन लॉन्च करने वाली है, फेस्टिव कलेक्शन, जिसके लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारी कंपनी के सभी डिज़ाइनर्स अभी इसी काम में लगे हैं। जी, धृति ने पूरी बात सुनने के बाद छोटा सा जवाब दिया, तुम भी डिज़ाइनर ही बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने इस फैशन शो में पार्ट लेने का, अपने सपने को पूरा करने का, अपने पैशन को फॉलो करने, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का एक चांस दे रहा हूँ। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास और टारगेट है वर्किंग वुमेन। इस फेस्टिव कलेक्शन में हर एज ग्रुप और कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया जा रहा है और तुम्हें टारगेट करना है वर्किंग वुमेन्स को और उन्हें ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते के अंदर मुझे अपने डिज़ाइंस तैयार करके देने हैं। अगर मुझे तुम्हारे डिज़ाइंस पसंद आए तो तुम्हें इस फैशन शो में अपने बनाए डिज़ाइनों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही एक डिज़ाइनर के रूप में तुम्हारे करियर की शुरुआत होगी। बोलो, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहोगी? अर्णव ने सहजता से पूरी बात कही और धृति के जवाब का इंतज़ार करने लगा। धृति, जो उसकी बातें सुनकर हैरान थी, उसने संशय भरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया, मेरे लिए ये क्यों कर रहे हैं आप? आपकी इतनी बड़ी कंपनी है और मैं तो अभी कहीं स्टैंड भी नहीं करती, फिर मुझे ये मौका क्यों दे रहे हैं आप? ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश करने का और अगर तुम इसमें सफल हुई तो मेरी कंपनी में एज अ डिज़ाइनर वर्क करोगी, जिससे फ़ायदा मेरी कंपनी का ही होगा। फिर भी आपके पास डिज़ाइनर्स की कमी तो नहीं, फिर मुझे ये मौका क्यों देना चाहते हैं जबकि मैंने इससे पहले ऐसा कोई काम नहीं किया है? डिज़ाइनर के तौर पर अभी तक मैंने अपने करियर की शुरुआत तक नहीं की है, फिर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? धृति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्णव उसके और उसके सपने के बारे में सोच रहा है। वही अर्णव जिसने उसे उस बुटीक से निकलवा दिया था, उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसका सवाल सुनकर अर्णव ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम में पोटेंशियल नज़र आता है, टैलेंट है तुम में, बस उसे उभर कर बाहर लाने वाले किसी की ज़रूरत है तुम्हें और मैं वही ज़रिया बनना चाहता हूँ। न्यू टैलेंट को मौका देना हमेशा से मेरी प्रायोरिटी रही है। मैं तुम्हारी काबिलियत पर विश्वास करके तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ खुद को साबित करने का, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का, अपने सपने को पूरा करने का, अपने करियर की एक बेहतरीन शुरुआत करने का, और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए एक बार अच्छे से सोच लो, उसके बाद मुझे जवाब देना कि क्या फ़ैसला है तुम्हारा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इन सब के पीछे मेरा कोई मकसद है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस मौके के बदले मुझे बदले में सिर्फ सैटिस्फाइंग रिजल्ट चाहिए तुमसे। तुम्हें अपनी काबिलियत को शो करके ये प्रूफ करना होगा कि तुम्हारे टैलेंट को पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम ये मौका डिज़र्व करती हो। मेरे इस फैसले पर गर्व करने का मौका देना होगा तुम्हें। इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए अपने मन से सभी डाउट्स को मिटा दो और एक बार अच्छे से मेरे प्रपोजल के बारे में सोचो। आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच समझकर मुझे जवाब देना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इन सबके पीछे मेरा कोई मकसद है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस मौके के बदले मुझे बदले में सिर्फ सैटिस्फाइंग रिजल्ट चाहिए तुमसे। तुम्हें अपनी काबिलियत को शो करके ये प्रूफ करना होगा कि तुम्हारे टैलेंट को पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम ये मौका डिजर्व करती हो। मेरे इस फैसले पर गर्व करने का मौका देना होगा तुम्हें। इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए अपने मन से सभी डाउट्स को मिटा दो और एक बार अच्छे से मेरे प्रपोजल के बारे में सोचो। आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच समझकर मुझे जवाब देना। धृति अब भी अपनी उलझनों में उलझी हुई थी। एक तरफ दिल था जो ये सोचकर घबरा रहा था कि इस मौके के बदले अर्णव अपने किसी बुरे इरादों का शिकार न बना ले उसे, और दूसरी तरफ दिमाग था जो उसे इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने को कह रहा था, क्योंकि ये एक मौका उसे उसके सपनों के करीब पहुंचा सकता था। अपनी उलझनों में उलझी धृति ने सहमति में सर हिला दिया, और जैसे ही वो उठी अर्णव ने तुरंत ही उसे टोका। अब कहाँ जा रही हो तुम? अपने कैबिन में। धृति ने असमंजस भरी निगाहों से उसे देखते हुए जवाब दिया। लंच टाइम होने वाला है, यहीं रुको, आज साथ में लंच कर लेंगे और साथ में आगे का शेड्यूल भी डिस्कस कर लेंगे। अर्णव ने धृति को लंच ऑफर किया। धृति मना तो करना चाहती थी, पर अर्णव के चेहरे पर मौजूद गंभीर भाव देखकर उसने कुछ नहीं कहा। अर्णव ने लंच कैबिन में ही ऑर्डर कर दिया था। लंच टाइम हुआ तब तक लंच टेबल पर लग चुका था। अर्णव ने आंखों से ही धृति को चलने का इशारा किया, तो सर हिलाते हुए वो चेयर से उठकर जाकर सोफे पर अर्णव से कुछ दूरी बनाते हुए बैठ गई। धृति ने उसकी प्लेट लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अर्णव ने अपना हाथ आगे करके उसे रोक दिया। धृति सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर अर्णव के दिमाग में चल क्या रहा है और वो करना क्या चाहता है। अर्णव ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने प्लेट लगाई और उसे धृति के सामने रख दिया और खुद के लिए दूसरी प्लेट लगाने लगा। धृति आंखों की पुतलियां फैलाई अचंभित सी उसे देख रही थी। मुझे देखना बंद करो और खाना शुरू करो, वरना तुम मुझे घूरती ही रह जाओगी और लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा। अर्णव जो उसकी निगाहों को खुद पर महसूस कर रहा था, आखिर में उसने धृति को टोकते हुए उसे खाने को कह दिया। धृति के कानों में जैसे ही उसके शब्द पड़े, उसने सक पकाते हुए उस पर से निगाहें हटा ली और हड़बड़ी में सर झुकाए जल्दी जल्दी खाना खाने लगी, और इसका असर जल्दी ही देखने को मिला। उसका खाना सरका और जोरों से खांस उठी। अर्णव ने तुरंत ही ग्लास में पानी डालकर ग्लास उसके लबों से लगा दिया और उसकी पीठ को हल्के से थपथपाते हुए बोला, क्या करती हो धृति, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? क्या जरूरत थी इतनी जल्दी जल्दी खाने की? कोई तुम्हारे सामने से खाना छीनकर तो नहीं लेकर जा रहा था? आराम से खाना था ना, देखा सड़क गया ना खाना? पता भी है ये कितना डेंजरस हो सकता है, जान भी जा सकती है ऐसे में, पर तुम्हें इससे क्या? कुछ भी हो जाए, तुम्हारी लापरवाहियाँ कभी कम नहीं हो सकती। अर्णव नाराज था उस पर, गुस्सा भी था और उसे डांट भी रहा था, साथ ही उसकी चिंता भी कर रहा था। कई तरह के भाव उसके चेहरे पर मौजूद थे और उन गहरी काली आंखों में परवाह की ओट में झांका उसका प्यार झलक रहा था।
पानी के कुछ घूंट पीने के बाद धृति कुछ संभल गई थी। आंखों में पानी आ गया था उसके और वो टकटकी लगाए आश्चर्य से उसे देखने लगी थी। शालद महसूस कर रही थी उसकी डांट व गुस्से में झलकती फिक्र और परवाह को, और उन आंखों में बसे उन अनकहे अनसुलझे से एहसासों को समझने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। अर्णव की हथेली अब भी उसकी पीठ सहला रही थी और दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद नज़दीक थे। अर्णव की चिंता भरी निगाहें धृति के चेहरे पर टिकी थीं और धृति की पनीली आंखें भी अचरज से अर्णव को ही देख रही थीं। अब ठीक हो तुम? अर्णव ने उसकी निगाहों को खुद पर टिके देखते हुए चिंता भरे स्वर में सवाल किया, जिसे सुनकर धृति हड़बड़ा गई। उसने तुरंत निगाहें इधर उधर करते हुए सहमति में सर हिला दिया। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धृति ठीक है। इस बात की श्योरिटी होने के बाद अर्णव ने चैन की सांस ली और जरा पीछे हटते हुए बोला, अब आराम से खाना खाओ, इतनी हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। धृति ने झट से सहमति में सर हिला दिया और नजरें झुकाए धीमे धीमे से खाना खाने लगी। अर्णव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने सर हिलाया और खुद भी खाना खाने लगा। दूसरी तरफ आज माधुरी और कबीर कबीर के केबिन में साथ बैठे लंच कर रहे थे। कबीर की नजरें बार बार माधुरी की ओर घूम रही थीं और कुछ परेशान सा लग रहा था वो, जबकि माधुरी पूरी तरह से रिलैक्स्ड थी और उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने खाने पर था। उनके बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी। कबीर उस खामोशी को तोड़ने में असमर्थ था और माधुरी को देखकर लग नहीं रहा था कि कबीर से बात करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी हो। देखते देखते लंच खत्म हुआ तो माधुरी हैंड वॉश करने वॉशरूम में गई। कबीर ने खुद को हिम्मत दी और उसके पीछे पीछे वो भी बढ़ गया। मधु, अब भी नाराज हो क्या मुझसे? माधुरी के कानों में कबीर का सवाल पड़ा तो उसने सर घुमाकर देखा। कबीर उसके बगल में ही खड़ा था और उम्मीद भरी नजरों से परेशान सा उसे देख रहा था। हूँ, और ये नाराजगी तब तक यूं ही बनी रहेगी जब तक धृति को तुम और अर्णव सब सच नहीं बता देते और वो तुम दोनों को माफ नहीं कर देते। पर मधु, वो तो धृति और अर्णव का पर्सनल मैटर है ना, उनके कारण तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? कबीर ने बेचारी से कहा और परेशान सा उसे देखने लगा। उसकी बात सुनकर माधुरी ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और तलखी भरे लहजे में बोली, सीरियसली, ये तुम कह रही हो कि ये उनका पर्सनल मैटर है? इन शॉर्ट, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बेगुनाह हो और मैं तुम्हें बेकार में ही सजा दे रही हूँ? तो मिस्टर कबीर, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अर्णव आपका ही दोस्त है और उसने जो भी किया उन सब में तुम भी शामिल थे। इसका मतलब हुआ कि धृति के साथ जो भी हुआ उसमें तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। तुम भी उतने ही बड़े गुनाहगार हो जितना अर्णव है, तो जब वो सजा का हकदार है तो उससे बच तो तुम भी नहीं सकते। याद है तुम्हें, मैंने पहली बार धृति से मिलकर ही तुमसे कहा था कि तुम्हें और अर्णव को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। धृति एक साफ दिल की, सीधी साधी और मासूम लड़की है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। पर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तब मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जब सच सामने आएगा तो तुम और अर्णव पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकोगे, और वो वक्त आ गया है। साथ ही मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि अर्णव के बराबर ही सजा के हकदार तुम भी होगे, क्योंकि तुमने उसके हर गलत काम में उसका साथ दिया। तो अब सजा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इतनी आसानी से माफी किसी को नहीं मिलेगी, और जो सजा अर्णव को धृति देगी वही सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी। तुम तो बस भगवान से प्रे करो कि सच सामने आने के बाद धृति अर्णव को माफ कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि धृति उसे छोड़कर चली जाए और उसके साथ साथ तुम भी मुझे खो दो। माधुरी ने बेहद शांत लहजे में पर गंभीरता से अपनी बात कही और वहां से निकलकर चली गई। कबीर बेचारा शॉक्ड सा खड़ा बस उसे देखता ही रह गया। कुछ देर बाद वो हाथ धोकर बाहर आया तो माधुरी सोफे पर इत्मीनान से बैठी थी। कबीर को लगा था कि माधुरी चली गई होगी, इसलिए उसे अब भी यहाँ देखकर वो चौंक गया। वहीं माधुरी सीधी होकर बैठ गई और गंभीरता से बोली, बहुत वक्त लगा दिया तुमने हाथ धोने में। खैर, मैं ये पूछने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि सृष्टि को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने के लिए क्या सोचा है तुमने, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है या नहीं? माधुरी का सवाल सुनकर कबीर होश में लौटा और बेहद गंभीरता से जवाब दिया, फिलहाल तो कुछ दिन कुछ नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। वो मुझमें इंटरेस्टेड है तो थोड़ा इंतजार कराऊंगा उसे। अगर मैंने सामने से और इतनी जल्दी कॉन्टैक्ट किया तो उसे मैं डेस्परेट लगूंगा और मैं उसके लिए ईजी टारगेट बन जाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। पहले मैं उसे अपने पीछे थोड़ा घुमाऊंगा, थोड़ा तड़पाऊंगा, उसके बाद उसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू करूंगा, और जैसा कि अर्णव ने कहा था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसके दिल के साथ खेलूंगा। वैसे ये आसान तो नहीं होगा क्योंकि वो बहुत चालाक है, पर कोशिश मैं पूरी करूंगा। गुड, माधुरी ने बस इतना ही कहा, फिर उठते हुए बोली, मुझे अपडेट देते रहना और कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना, शायद मैं उस चालाक लोमड़ी को फंसाने में कोई हेल्प कर दूं। हूँ, कबीर ने हामी भरी तो माधुरी वहाँ से चली गई और कबीर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में भरे परेशान सा माधुरी की दी धमकी के बारे में सोचने लगा। टू बी कंटिन्यूड।